वहां पर होगा, आप लोग उसमें खूब अच्छी तरह से भाग लेंगे और उनके भजन में आप लोग निविष्ट रहेंगे। आज यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। कीर्तन के बाद में अभी आरती होगी, ठाकुर जी की भी आरती होगी, देख कर। गोविंद जी मथुरा के ही हैं, मथुरा को छोड़ करके नहीं जाते, किंतु भक्तों के कुछ कारण, कुछ लोगों ने अवज्ञा इत्यादि की या क्या, उनकी कैसी लीला, या दूसरे जयपुर के भक्तों, राजस्थान के भक्तों का हृदय देखकर कुछ दिन के लिए वहां पर चले गए, या एक रूप से यहाँ रहते हुए भी वहां पर चले गए हैं, उनके लिए कुछ असंभव नहीं। उन्होंने देखा कि ये भक्त बड़े प्रेम के साथ में भागवत सुन रहे हैं, इनको कुछ प्रसाद देना चाहिए, तो अनुग्रह दे करके उन्होंने कुछ प्रसाद उन्होंने भेजा है। अभी आरती होने के बाद ही मैं, आरती होने के माने अभी तुरंत हम लोग यहाँ से प्रसाद देंगे, वो प्रसाद भी आप लोग लेकर के सिर पर रख करके और प्रसाद लें। गौर प्रमाण I'm not afraid.
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च तानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानत। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमां च।
छठा दिन हो गया कि सातवां? सातवां की सातवां छठा दिन से
भागवत छठा अभी हम लोगों का वेणु गीत प्रारंभ हुआ है। उसके पहले दवानल पान शायद हो गया होगा। किस प्रकार से जी भगवान का विमुख होकर के इस संसार में पड़ा हुआ है, जिसमें आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैवी तीनों प्रकार के तापों से जर्जरित होता है। इसमें भी कोई भगवान को नहीं पुकारता रक्षा के लिए। यदि कोई भगवान से पुकारे सचमुच में आंतरिक हृदय से, तो उसे रक्षा तो हो ही जाएगी, अधिकांत रूप में उनके चरणों की सेवा भी प्राप्त कर लेगा गोलोक वृंदावन में। इसलिए दिखलाया कृष्ण गायों को लेकर के चराने जा रहे हैं। इंद्रियां हमारी वो गायें हैं, इंद्रियां भी विमुख हो गई हैं कृष्ण के तरफ में पीछा कर दिया और सामने विषय भोग कर दिया। घास विषय है, जब घास चरने लगते हैं इंद्रियां सब चरने लगती हैं और अपने प्रभु को छोड़ देती हैं तो दवालन में डरने लगती हैं। अपने आप घर्षण से वो आग पैदा होती है। क्या तात्पर्य हुआ? कोई दूसरा आग लगा नहीं देता, हमारे कर्मों के संघर्ष से ही अपने आप आग लगती है, उसी में हम अपने आप जलते हैं, दूसरी कोई आग नहीं लगाता। हम समझते हैं कि दूसरी कोई आग लगा रहा है, मैं ही अपने कर्मों से अज्ञात रूप में भगवान को भूल हो करके ऐसे कर्म करते हैं जिससे कि हम लोग तीनों प्रकार के तापों में सब समय जलते हैं। इससे कोई भी रक्षा नहीं पा सकता है, केवल ही पा सकता है जो संपूर्ण रूप से कृष्ण को आत्मसमर्पण करे और उनको पुकारे। इस तरह से वो सांसारिक तापों से बच जाएगा। जैसे गायों ने और सखाओं ने देखा कि हम तो भांडीर वन में बैठे हुए हैं, गायें पागुर कर रही हैं बड़े आराम के साथ में, और सखा लोग कृष्ण के चारों तरफ में बैठ करके खा रहे हैं, खिला रहे हैं शांतिपूर्वक। हम लोग स्वप्न देख रहे थे, गायें सोचती कि स्वप्न देख रहे थे, सखा लोग देख रहे हैं कि स्वप्न देख रहे हैं कि क्या थी, अब भूतकाल का विषय हो गया। ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान की भक्ति यदि एकांतिक रूप में कोई करे पाप अनायासी दूर हो जाते हैं और ये भूतकाल का विषय हो जाता है, हम देखते हैं कि कृष्ण की सेवा में निमग्न हैं। इतनी अच्छी और मधुर चीज है ये, किंतु फिर भी कष्ट से, साध्य से, कष्ट से जो दुख पाए जाते हैं, सुख नहीं मिलता है, किंतु थोड़े से आयास से ही, स्वाभाविक रूप में परिश्रम से ही, बिना परिश्रम का ही भगवान का भजन हो जाता है, हम लोग उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए भगवान का भजन का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से हम लोग अब ये गोपियों का चरित्र कुछ दे रहे हैं। गोपियां, गोपियों का भी पूर्व राग समझो, हम लोगों का भी पूर्व राग है। कैसे पूर्व राग है? गुरुजी ने हमारे अंदर में कृष्ण सेवा की वासना दी। कृष्ण कैसे हैं इसलिए बतलाया, जे ऐसे हैं। कैसे? बरहा पीड़ा नटवर बकु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रत बास कनक कपिशंग वैजयंती चमाला रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोपबृंदई वृंदारण्यम शबदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। गुरु कह रहे हैं, पुरोहित कह रहा है, विवाह को कराने वाला मैं ध्वस्त भी कह रहा है, कैसे श्याम सुंदर सुंदर है। बरहा पीड़म, इसकी व्याख्या हो गई होगी, कैसे सुंदर हैं, स्वाभाविक रूप में वो सुंदर है। भूषणम भूषणांगम है वो, मेघ श्यामल है, कोमलांगो मेघ के समान। कैसे? मेघ के समान, जल से भरे हुए मेघ के समान जो अभी बरसने वाला है। और उसमें विद्युत जो है वो कैसे हैं? वो पीतांबर है, वो विद्युत चमक करके और ओझल हो जाती है, और यह विद्युत ये श्याम रूपी मेघ में के ऊपर में सब समय यह रहता है। उसमें मेघ कृष्ण है, कृष्ण के अंग हैं, और ये विद्युत उनके वस्त्र हैं। विद्युत से या मेघ से कृष्ण की और उनके वस्त्रों की उपमा नहीं दी जा सकती। तो भी एक शाखा चंद्रन्यास से कह रहे हैं, जैसे कोई एक वर हो खूब सुंदर, और जिसकी शादी होने वाली है वो कुमारी लड़की, और उसे कोई वर्णन करता है वो बड़ा गोरा है। कैसा गोरा है? गोरा एक तरह का होता है, जितने जगत में पुरुष या स्त्री हैं या तो सांवले या गोरे होंगे, किंतु सभी एक समान होते हैं, एक समान होगा ही। सबके मुख सुंदर हैं, किंतु सबका मुख एक समान सुंदर होगा? सबके दांत एक तरह के होंगे, दांत किंतु एक तरह के नहीं, मुख एक ही समान, किंतु मुख की भंगी ऐसी होती है किसी की, देख करके आदमी मुग्ध हो जाता है। आंखें सबकी तो होती ही हैं, तो कृष्ण का कैसा मुखारविंद है, कैसी आंखें हैं, कैसी वनमाला है, कैसा उनका घुघराले केस, और उसके ऊपर में मोर मुकुट है। यह वर्णन के द्वारा कोई बतला सकता है? जब तक ये अनुभूति न रहे, जो कह रहा है वो तो कह रहा है, जहां कैसी अनुभूति के साथ में कह रहा है। कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी जी, व्यास जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, किंतु जिन लोगों ने देखा नहीं वो क्या अनुभूति करेंगे? तो भी एक न एक तो धारणा तो बनेगी ही, वो जरूर धारणा बनेगी। गोपियों के बारे में ये जो कहा गया है, तो उनका कृष्ण से नित्य मिलन है, तो अभी उनका नित्य पूर्वराग भी है। अभी मिलन नहीं हुआ, उसके पहले की जो दशा मिलन के लिए जो आकांक्षा होती है, उसी प्रकार से गोपियों का नित्य मिलन कृष्ण के साथ में है, किंतु फिर भी वो ऐसी देखती हैं, मन कभी उनसे भेंट ही नहीं। कृष्ण से मिल करके गोपियां जा रही हैं, श्रीमती जी क्या कह रही हैं, अभी शाम को जा रही थे तो सूर्य अस्त होने जा रहा था, और जब मैं अभी आ रही हूं तुरंत तो देख रही हूं क्या, अभी सूर्य उठ रहे हैं, ललाई आ रही है, अरुणोदय हो रहा है, आज रात ही नहीं हुई, हम मिले ही नहीं, चली थी किंतु मिली नहीं। ऐसे ही वहां पर ऐसा ही होता है, इसलिए साधक लोग गुरु के मुख से भागवत के माध्यम से हमारे गोस्वामियों के ग्रंथों के माध्यम से कृष्ण के रूप की एक भावना रखेंगे। अरे ये तो नहीं, तो एक तो ऐसा तो होगा जैसे कोई बंसी लिए हुए खड़ा है, कैसे खड़ा है, त्रिभंग रूप से, ये तो हम कल्पना कर ही सकते हैं, यद्यपि यह कल्पना रूप नहीं है किंतु एक तो है। इसलिए साधक के लिए यह पूर्वराग का जो विरह है इसी का नाम भजन है। उनसे मिलने के लिए जिसके अंदर में जितनी विरह होगी, तर्पण होगी, जिस प्रकार से इन गोपियों को है, नित्य कृष्ण के साथ में मिलन होने पर भी इनकी जितनी हृदय में विरह है, मिलने के लिए तर्पण है, इसी को बतलाया गया वेणुगीत। वेणुगीत में कहीं भी बंसी या बंसी बांसुरी मुरली कहीं प्रयोग नहीं, कहीं भी इसमें 14 या कितने 16 कितने श्लोक हैं, कहीं भी इसमें दूसरा नाम नहीं, वेणु 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 सब श्लोकों में ही वेणु वेणु है। गोपियां उलाहना भरे भाव से कुछ मान करती हुई, गुमान करती हुई, कुछ टेढ़े ढंग से ये कृष्ण को उलाहना एक तरह से दे रही हैं, बंसी को उलाहना दे रही हैं। प्रारंभ से ही बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत बासव कनक कपिसंग वैजयंती जमाला रंध्रान वेणु अदर सुधया वेणु है न अदर सुधया वेणु वेणु अदर सुधया पूर्यान गोप बृंदे बृंदारण्यम शबदरण्यम पाप शतगीत कीर्ति। यही वेणु से ही, उनके वेणु से चीढ़ है, वेणु से चीढ़ है न प्यार है, क्या है, है? आकर्षण है ना वेणु से, वेणु 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 का क्यों कर रही। उद्धव जी कहते हैं या भावरा कह रहा है ना उनसे भ्रमर, अरे श्याम 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 तुम कर रही है, श्याम धूर्त है, चोर है, अकृतज्ञ है, ये सब कर रही है, तो फिर उन्हीं का नाम क्यों ले रही, उनकी कथाओं को भूल क्यों नहीं जाती, तो कथाएं भूलती हैं वो, कभी हो सकता है कृष्ण को भूल जाए कि उनकी कथाओं को नहीं भूल सकती। अरे कृष्ण की कथाएं और कृष्ण अलग अलग थोड़े हैं, कृष्ण का कथाओं का स्मरण ही तो कृष्ण का स्मरण है, किंतु वो भूल नहीं पाती। इसलिए वेणु के प्रति कुछ चीड़ भी है, कुछ स्नेह भी है, कुछ बंधुत्व भी है, सभी उसमें है, इसलिए गोपियां उसी को लक्ष्य करके कह रही हैं। इसलिए साधक को ऐसा ही भाव होना चाहिए, कृष्ण से मिलन की तीव्र आकांक्षा। चैतन्य महाप्रभु जी ने गंभीरा लीला में यही दिखलाया, कैसे उनको कृष्ण के प्रति विरह है, मिलन की कितनी उत्कंठा है। अरे उतनी न हो, उतने हम लोगों से नहीं होगा, किंतु होना तो कुछ तो होना चाहिए, कुछ भी तो होना चाहिए, हम लोगों को इसके लिए नहीं होता। ये कैसे होगा, हरी कथा सुनने से होगा ना, जितने उनके विषय में हमारी हमारा ममत्व होगा, कृष्ण के साथ ममत्व होगा, कृष्ण के ममत्व होने के पहले गुरु और वैष्णव में ममत्व होगा ने? जैसे अपने लड़के के प्रति, लड़की के प्रति, स्त्री के प्रति ममता होती है, ऐसे नहीं मालूम होगी। 10 बरस तक 20 बरस तक अपने बच्चे के साथ में कोई रहे, मालूम नहीं होगा जी ममता है, किंतु उसका अपहरण हो जाए एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, तो देखो तो वो ममता कैसे रंग लाएगी। हम लोग भी मठ में इतने आदमी रहते हैं, ममत मालूम नहीं होता कि ममत पर रहती है, कैसे मालूम हो। यदि वो किसी प्रकार से दुखी होकर के और थोड़ा सा न खाया या थोड़ा सा मठ से बाहर चला जाए तो देखो तो ये कैसी बात होती है। इसलिए हरि कथा में ममत को लाती है हरि कथा। जितना ही हरि कथा जो श्रवण करेगा, जितना ही भगवान का नाम करेगा, जितना ही उनका मनन चिंतन करेगा, उतना ही ये ममता आएगी। यही ममता पहले रुचि कहलाती है, फिर कहलाती है आसक्ति, और यही ममता जब पूर्ण रूप में हो जाती है तो भाव कहलाता है। यही भाव जब परिपक्व होकर के अपनी पूर्ण दशा में उपस्थित हो जाएगा तो यही प्रेम कहलाता है, और उत्तर उत्तर ये ममत्व तो बढ़ता जाएगा। वही स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, महाभाव इत्यादि तक बढ़ता हुआ चला जाएगा। ममता ही भक्ति है असल में। ममता अतिशयांकित यह प्रेम है, और जब थोड़े से रूप में रहेगा तो उसको भाव कहते हैं। इसलिए ये इन हरि कथाओं के माध्यम से ही उनके प्रति ममता बढ़ेगी। जो जितना ही हरि कथा का अनुशीलन करेगा, जितना ही हरि नाम शुद्ध रूप में करने की चेष्टा करेगा, कृष्ण के प्रति ममत्व आएगा, जरूर आएगा। इसलिए इन हरि कथाओं को सुनना चाहिए। हम लोग उसी दृष्टि से देखेंगे जो हमारा उसके प्रति लोभ हो। किसके प्रति लोभ हो? ये कौन कह रहा है? वेणुगीत गोपियां कह रहे हैं, गोपियों का समूह कह रहा है। एक एक घर में गोपियां बैठी हैं, उसमें 10 गोपी 20 गोपी 50 गोपी अपने अपने भाव वाली हैं, स्वपक्ष वाली हैं। वो कैसे हैं? एक साथ बैठे। स्वपक्ष में है ललता के गण वाली जो है वो एक साथ में बैठी, विशाखा के भाव वाली जो है वो अलग से बैठी, चित्रा वाली अलग बैठेगी, अष्ट सखियों के जितने भी हैं उनका अपना अपना एक महत्व है, एक एक स्वभाव है। कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा जी के प्रति अपनी एक निष्ठा है, इसलिए ये सब। विपक्ष वाली एक साथ में, सुहित वाली एक साथ, और तटस्थ वाली एक साथ में, ऐसे कितने हजारों उनके समूह, गण इत्यादि हैं। जूत अपने अपने घरों में एक एक जगह एकत्र होकर के कह रही हैं। कब कह रही हैं? कृष्ण गोचारण करने के लिए चले गए। जब गोचारण करने के लिए चले गए तो ये तो जहां तक कृष्ण दिखाई पड़े तब तक तो वहां तक गई। जब आंखों से ओझल हो गए कृष्ण तो वह अपने अपने घरों को लौटाई गई। लौटी नहीं, लौटाई गई। किसके द्वारा लौटाई गई? जिन सखियों का भी उतना गाढ़ा प्रेम नहीं है, या उनकी सास हैं, माताएं हैं, बंधु हैं, भाई हैं, उन लोगों ने उसको पकड़ करके घर में लाया। अब यहां पर बैठ करके देख रही हैं भाव नेत्र से, भाव नेत्र में यहां पर बैठी हैं, भाव नेत्र से देख रही हैं। सखियां भी बैठ रही हैं, वो भी भाव नेत्र से देख रही हैं, और देख करके तभी बणेन तो अभिरे धीरे, क्या है वो? गोपियां कृष्ण के अलक्षित होकर के कृष्ण जब चले गए, वो गोपियां देखा जब कृष्ण को उच्चारण कर एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं, और देखा क्या, ये श्लोक जो है बराहा पीड़म किसका है? सुखदेव गोस्वामी। उन्होंने कैसे कहा? गोपियों ने इसको उच्चारण किया, भाव से जब देखा कृष्ण को इस रूप में तो सुखदेव गोस्वामी के यहां परछाई पड़ी उसकी, और तब उन्होंने ये गाना आरंभ किया। तो वो कृष्ण कैसे गोचारण कर रहे हैं, कैसे बंसी वादन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और सारी प्रकृति उनके प्रति क्या भाव से कैसे कर रही है, उन्होंने सारी सब चीज को प्रत्यक्ष मूर्तिमान के रूप में देखा, अपने से सबको श्रेष्ठ देखा। देखा क्या? पहला श्लोक तो इन्होंने बतलाया, उनकी आंखें ही यथार्थ आंखें हैं। आंखें रहना उन्हीं का सार्थक है जो कृष्ण का रूप देखा। रूप ही नहीं, एक वन से दूसरी वन में गायों के साथ सखाओं के साथ में जाते हुए देखा। बलदेव जी आगे आगे बंसी बजा रहे हैं, पीछे पीछे वेणु बजा रहे हैं कृष्ण। देखा पीछे जो कृष्ण है वेणु बजा रहे हैं, वो सदैव नेत्रों से बंसी बजाते हुए किसी और देख करके बंसी बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उनका यह मुस्कान भरी जो वेणु है बजाना, इसको जिसने देखा उसकी आंखें सार्थक है, अन्यथा किसी की सार्थक नहीं है। उसमें भी उसकी सार्थक है जो बलदेव जी को आगे जाते हुए देखा चले गए, और पीछे से जो कृष्ण हैं श्रीमती राधिका के साथ में बंसी बजाते हुए देखा, और दोनों ने बड़े करुण नेत्र से एक दूसरे के तरफ में देखा, मुस्कुराते हुए देखा। उनको जो यह दृश्य देखा, उन्हीं की आंखें एकमात्र सफल हैं, दूसरों किसी की नहीं है। च्युत प्रवाल बरहस्तोकोत्प्लाब्ज मालानुप्रिक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये बिरेजतु अलंग पशुपाल गोष्ठं रंगे जथा नटवरो क्वच गायमान। ओ कृष्ण की मैं क्या अद्भुत सौंदर्य माधुर्य वर्णन करूं, बड़ी भारी सभा जुटी हुई है। कहां पर जुटी हुई है? गोपेश्वर महादेव के विराट सामने विराट वन में, बहुत लंबा चौड़ा समतल जमुना का किनारा, हजारों सब ऋषि महंत सब रसिक वैष्णव लोग जुटे हुए हैं, और उसमें दो सुंदर सुंदर नटवेश में बंसी लिए हुए मयूर मुकुट बांधे और बीच में उपस्थित हुए, और ऐसा सुंदर नृत्य करने लगे देख करके सभी मोहित हो जाए। रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है। हमने कभी रास और खूब कम ही देखा है, एक दो बार कभी देखा, किंतु एक बार थोड़ा सा नट के रूप में देखा था, कृष्ण बना हुआ अद्भुत, और राधिका जी भी बनेंगे। ऐसा सब सुंदर नृत्य किया जब देश विदेश के लोग थे बन महाराज जी के यूनिवर्सिटी में, उनका नृत्य देख करके सौंदर्य देख करके सभी मुग्ध हो गए। बोली कैसी, एकदम कोयल की गले को भी मात करने वाली, कुहू कुहू को भी मात करने वाली। तब कृष्ण की क्या दशा होगी और उनकी, तो भाव नेत्र से यही देख रहे हैं। रंगभूमि में दो नट, एक श्याम एक गौर, एक बलदेव जी और एक कृष्ण बंसी बजाते हुए उतरे, देख करके सभा एकदम चकित हो गई। किस श्लोक का आरंभ? च्युत प्रवाल। च्युत माने क्या? आम्र। प्रवाल उसके लाल लाल जो अभी पत्ते अभी जो निकलते हैं कोमल कोमल, उनको यहां पर रख लिया है कृष्ण बलदेव ने, या उसी के पत्ते को यहां पर गोलाकार बना करके यहां पर पहन लिया है, कनेर का फूल लगा लिया है, गले में वैजयंती माला झूल रहे हैं। च्युत प्रवाल बरहस्तवकोत्पलाब्ज, सुंदर सुंदर मयूर के पंखों को लेकर के ऐसे ही अपने केशों में लगा लिया है, बना बना हुए मुकुट कुकुट नहीं, ऐसे ही दो चार गुच्छ लेकर के यहां पर लेकर के लगा लिया है। बरहस्तवकोत्पलाब्ज मालानुप्रिक्त परिधान विचित्र वेशो, उनका परिधान कैसा है, पहने हुए कैसे हैं वस्त्रों को, अद्भुत। आगे चल करके बतलाएंगे, गाय को नोने के लिए पैर बांधने के लिए इसको तो यहां पर बांध रखा, और पास माने गायों को बांधने के लिए जो रस्सी होती है उसको यहां पर डाल दिया है। मस्त खो करके दोनों, जैसे गायों को दोहन करने के लिए जाते हैं एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं, एकदम गोपाल का वेश सखाओं का वेश बना लिया। जब जैसा वेश वो करते हैं, यदि नंगे रहे तो और भी सुंदर। मान लो कि जैसे किसी गोपी ने कोई एक काली कोई चीज लगा दी, मल दी मुख में, और भी परम सुंदर। एक आदमी खूब सुंदर हो, एक लड़की या लड़का, और एक मशा हो जाए, मशा कहते हैं ना काला सा, वो तो खराब नहीं दिखता, और भी अधिक सुंदर दिखता है। ऐसे ही कृष्ण के अंगों में जो कुछ लगा दिया, या धूल लग जाती है रास्ते की, गौओं के खूर से उठी हुई, वो कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य को और न जाने कितना बढ़ा दिया। मालानुप्रिक परिधान विचित्र वेशौ मध्य विरजतु अलम पशुपाल गोष्ठ्यांग रंगे यथा नटवरौ कचुगायमान। ऐसे सुंदर वो गान करते हैं, कैसे बंसी के द्वारा गान कर रहे हैं, अत्यंत अद्भुत सुंदर दिख पड़ते हैं। इतने में गोपियां देखा जे उनके अधरों पर मुरली बजा रही है, विराजमान है, बस उनको हो गया मान, और चीड़ करके अबुलाना देते हुए वो कहने लगे, गोप्या कुशल किमाचर दैम कुशलस्म वेणु दामोदर धरा अपि गोपिकानं भुंक्ते स्वयं अवशिष्ट रसंहृदन्यो हिस्वत्तचो अश्रु मुमूचु जथो तर्वो जथार्जा। कितनी ढीठ, कितना ढीठ है ये वेणु, पुरुष होकर के भी हम लोगों के अधिकार में रहने वाली चीज पर जबरदस्ती हम लोगों को दिखलाते हुए अंगूठा, और कृष्ण का यह मुखारविंद का अधरों का यह रस पी रहा है। हम लोगों के अतिरिक्त किसी का इस पर अधिकार नहीं है, और हम लोगों को दिखलाते हुए, हम लोगों को दूर फेंक करके, और हमारे सामने हमारी संपत्ति को लूट रहा है, हम चू तक नहीं कर सकती, अपनी विवशता यहां पर दिखला रहे हैं। वेणु एक काठ की सूखी है नाली, और उस पर इतना चीड़, यही महाभाव का लक्षण है। अब प्राणी में भी कृष्ण सेवा की कुछ नहीं, और तभी देखती हैं महाभाव की अवस्था में जो हमसे भी श्रेष्ठ हैं, और कृष्ण की सेवा कर रही हैं। वैष्णव लोग गुरु के, कोई गुरु सेवक अपने गुरु भाइयों को किस लिए सम्मान देता है, किस लिए आदर करता है? जितना ही उच्च सेवक होगा उतना ही देखेगा जी हमसे अधिक गुरु जी की सेवा कर रहा है। यहीं से अभ्यास पहले हो, गुरु सेवक है मान्य आपनार, क्यों क्यों मान्य हो, इसीलिए वो देखता है ऐसा, मैं सेवा जो नहीं कर सकता हूं उसे अधिक सेवा करता है, सेवक का यही हृदय में भाव होता है। जिसको ऐसा होगा वो सब सेवकों को मान्य देगा, ईर्ष्या भी हो, अन्यथा तो ईर्ष्या होना बाध्य है। इसलिए वहां पर वो गोपियां देखती है वेणु जो मैं सेवा नहीं कर सकती, और हमारे धन को हमारे सामने ही जिस पर मेरा सत्व है और उसको अपहरण कर रहा है। वेणु पुरुष जाति होकर के भी स्त्रियों के जो की संपत्ति है उस पर वह अधिकार कर रहा है, तनी के भी नहीं रखता, कुछ भी अवशिष्ट है पूरा का पूरा पान कर रहा, हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रख देता तो भी नहीं रखता। देखो तो ये हम चिढ़े नहीं, क्यों नहीं चिढ़े, इसके बाप दादे हैं ये भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और प्रेम से आंसू बहा रहे हैं उनके लिए। हमारे कुल में एक ऐसा हुआ जब कृष्ण के अधरों पर बैठकर तो उसका पान कर रहा है, और कृष्ण का कैसा प्यारा है, जरा वो बेणी तो दे दो ना, बांसुरी हमारी दे दो, कौन कह रहा है, कृष्ण हाथ जोड़ करके गोपियों से, वही बंसी जो हमारी प्राण से भी प्यारी है, जिसको एक समय एक क्षण के लिए भी सोते अवस्था में नहीं छोड़ता, और उसको उन लोगों ने चोरी करके ले ली, प्राण ले लिया होता तो कोई बात नहीं होती, किंतु बंसी ले ली, पैया पड़ो तुम, मैं उनकी पैया पड़ रहा हूं, भाई बंसी तो हमारी दे दो, प्राण तुम इसके बदले ले लो, किंतु बंसी दे दो। तो ये बंसी जिस कुल में पैदा हुई, कौन कुल में पैदा हुई, बांस, किंतु बांस के बड़े भैया हैं, छोटे भैया हैं, वो कौन हैं, बरगद के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, ये बड़े भैया हैं, और छोटे भैया सब पांच बहुत भाई हैं ये लोग, वो नंद बाबा के तो दो बड़े और दो छोटे और बीच में वो पांच भैया हैं, और इनके कितने हैं, बरगद आम इत्यादि लाखों पेड़ हैं, और छोटे में कौन है, बांसों से भी छोटे जो पतले ये इत्यादि हैं, लताएं हैं गुल में। आज उन सबको गुमान है कि हमारे वंश में एक ऐसा हुआ जो कृष्ण का इतना प्यारा हो गया जो गोपियों की संपत्ति को भी अपहरण कर रहा है और सब समय उनके मुखारविंद पर विराजमान होता है, कृष्ण उसको छोड़ते नहीं है स्वप्न में। इसलिए आज अपने वंश में बांस को देख करके तो कोई बात ही नहीं, उनके जो बड़े भैया छोट भैया हैं पेड़ सब बरगद के इत्यादि के नीम के और सब चीजों के, ये प्रेम से आंसू बहा रहे हैं अर्थात तो उनसे रस की धारा निकल गई, बड़े प्रफुल्ल हैं, कदम्ब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्यों आज वंश हमारे वंश में, तो वो क्या कर रहा है, एकदम पुलक से भर गया, आम के पेड़ों में मंजरी लग गई, एक पेड़ होता है हरसिंगार, देखा है हरसिंगार, सब समय सिंगार से भरा रहता है, और कृष्ण के लिए अपने सारे फूलों को एक साथ ही जमीन पर बरसा देता है। यदि वो हरसिंगार के पूरे फूल गिर जाए तो आप समझो कि अब क्या हो गया, ये ब्रह्म मुहूर्त हो गया, निशांत तो हो गया, अब रात अंत हो गया, ये समझ लो। जिस समय रात अब बीतती जाएगी, तारे और चंद्र धीरे धीरे ओझल होते चले जाएंगे, जब तारे ओझल होते होने लगेंगे तो ये भी अपना फूल सब छोड़ने लगता है, अब रात समाप्त तो होने वाली है, ऐसे ऐसे सब पेड़ बड़े प्रसन्न हो गए, लताओं में फूल भर गए, वो भी प्रसन्न हो गई, आज हमारे कुल में एक ऐसा पुत्र हुआ, यथार्या जैसे आर्य लोग उनके पूर्वज लोग, यदि कृष्ण अपने कुल में कोई एक भी भक्त हो गया शुद्ध तो उसके पूर्वज लोग पीछे से आने वाले लोग सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारे कुल में एक ऐसा हुआ, प्रहलाद महाराज के कुल में आज तक भी लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि मनुष्य तो थे ना पुरुष, इसलिए हम कहते हैं मनुष्य लोक में हमारे कुल में प्रहलाद महाराज जी जैसा भक्त हुआ, नरलीला में या जैसे हो नर नर करेवर में कृष्ण पैदा हुए, और किसी कुल में तो हुए नहीं तो वो हमारे कुल में हुए, हम लोग का गोत्र क्या है, जो कृष्ण का भजन करता है वो सब अच्युत गोत्र हैं, विशेष करके हमारे गौड़ीय वैष्णव सब, स्त्री हो पुरुष हो सबका गोत्र अच्युत, इसी तरह से समझो आज वो बड़ी प्रसन्न है, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, आज हमारे कुल में ऐसा हुआ, केवल एक प्रसन्न नहीं है ये गोपी, किंतु दूसरा यदि होगा ना तो हम लोग तटस्थ हैं ना, हम लोग कहेंगे गोपियों के समान और किसी को आनंद नहीं हुआ। तो करें इन गोपियों ने कौन सी ऐसी तपस्या की, कुशलस्मवेणु किम्माचरत एम कुशलस्म वेणु, वो ये जो कुशल माने जो धन्य है वेणु, इसने कौन सी पूर्व जन्म में इसने तपस्या की, सखी हम लोग जानती तो आज ही से वो तपस्या हम आरंभ कर दें, तो हम लोगों भी यही सोचे विचारे जे हम आज से ही वो चीज को जाने जे कैसे कृष्ण पाए जाते हैं और ये भाव कैसे आते हैं, ये गोपियों का भाव कैसे आते हैं, उसके प्रति लोभ हो और उसको जानने की चेष्टा करें। कहाँ मिलेगा ये सब चीज, मिलेगा कहाँ से, जो इस भाव को प्राप्त करता है उसकी कुंजी कहाँ है, भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वलिन इत्यादि ग्रंथों में, गोस्वामी ग्रंथों में, किंतु चाबी किसके पास में है, रसिक और भावुकों के पास में है, उनके पास में जाएंगे, निहोर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, देखेंगे बार बार उनसे ये कैसे मिलता है, इसका इस प्रकार से साधन है। आज गोपियां उस साधन को खोज रही हैं, कैसे हुआ वेणु, और समझते हैं कि वो जो वेणु हुआ होगा वो कैसे गोपियों का चरित्र में लोभ हो करके तब किसी प्रकार से वो बांस कुल में जन्म लेकर के तो आज वेणु हुआ, गोपियों की कृपा से ही समझो, आज गोपियां ललक रही हैं जो मैं वेणु होकर के जन्म लेती, ऐसी तपस्या करती जो वेणु कुल में जन्म होता वेणु बनकर के कृष्ण के मुखारविंद में चलती, इसलिए आज उनके प्रति ईर्ष्या हो रही है।
क्या कर
पूर्णापुरिंद, हाँ कल होगा, कल कल। इस तरह से वो आगे बढ़ती हैं। देखिए हमारे लिए वर्ष की बात नहीं है, वेणु होना, कृष्ण के मुख पर विराज होना, ये हम लोगों के लिए संभव पर नहीं है। अच्छा तब वृंदावन में कहीं एक धूल भी बन जाए, धूल कणा भी बन जाए, वृंदावनम सखी भो वितनोत कीर्ति, जग देवकेशत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणुम अनुमित्तन मयूर नित्यम प्रेक्षा दिशान अवर्तान समस्त सत्वम। आ देखो तो आज ये वृंदावन भूमि पृथ्वी का, मैं पृथ्वी में सबसे आज पृथ्वी को धन्य कर रहे हैं। वृंदावनम सखी भूव वितुन इति कृति, आज पृथ्वी में सबसे इसी की वृंदावन की कृति हो रही है, और वृंदावन है इसलिए मथुरा की कृति, मथुरा इस विश्व में है इसलिए उसकी कृति, विश्व की पृथ्वी की कृति। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाओ, यदि पृथ्वी में मथुरा नहीं रहता तो पृथ्वी की कोई भी ख्याति नहीं होती, प्रतिष्ठा नहीं थी, और मथुरा में वृंदावन यदि नहीं होता तो इसकी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं। इस वृंदावन में ये बंशीवट इत्यादि नहीं होता तो तब वृंदावन का क्या महत्व रह जाता है, जहां पर राशि नहीं हुआ। उस वृंदावन वर्ग में भी 84 करोड़ के ब्रजमंडल में या 16 करोड़ वाली परिधि वृंदावन में यदि गोवर्धन गिरिराज नहीं होते तो वृंदावन का महत्व क्या होता, और उसी गोवर्धन की तराई में यदि श्याम कुंड और राधा कुंड नहीं होते तो इसकी भी क्या महत्ता रह जाती। इसलिए एक एक से अधिक यहाँ पर वृंदावन की कह रहे हैं, वृंदावनम सखी भो वितुने तु कर, पृथ्वी लोक में वृंदावन की शोभा हो रही है। क्यों हो रही है, जद देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, आज कृष्ण के चरण कमल मधुर मधुर जिसमें ध्वजा वज्र अंकुश कमल इत्यादि स्फुट रूप से परिव्यक्त है। कृष्ण के जो चरण कमल पड़ते हैं 19 प्रकार के उनके चिन्ह हैं, साधक लोग उसका ध्यान करते हैं, उसी प्रकार से श्रीमती राधिका के चरण चिन्ह भी हैं, तो कृष्ण 19 हैं जिसमें और कोई प्रकट हो चाहे न हो किंतु कमल ध्वज वज्र अंकुश त्रिभुज कलश ये जरूर रहेंगे, प्रोमिनेंट रूप में ये रहते हैं। आज वृंदावन में कोई भी स्थल नहीं है जहाँ पर कि ये चीज़ें नहीं हैं, जहाँ देखो तहाँ तहाँ पर वज्र ध्वज अंकुश कृष्ण के चरण छोटे छोटे मधुर मधुर ये चरण कमल पहने हैं, ये वृंदावन के अतिरिक्त कहाँ होगा। और उसमें कृष्ण को जब ही देखा मयूरों ने, वो धन्य है मयूर इस वृंदावन में, प्रेक्षाद्री शानु गोवर्धन गिरिराज हैं उनके शानु प्रदेश में, शानु माने क्या, जो समतल भूमि है नीचे वाली, थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा भी वह रहेगा, समतल भूमि जो है जहाँ की कदम्ब के वृक्ष, तमाल वृक्ष हैं, आम हैं, कदम्ब के हैं, चारों तरफ से फूल लगे हुए हैं, लताएं हैं जो वृक्षों के ऊपर में चढ़ रही हैं, फूलों फलों से भरती है, उसमें मुक्ता लता भी होगी। उसमें जहीं कृष्ण ने प्रवेश किया गोचारण करते हुए, मयूरों ने देखा और कुकना आरंभ कर दिया, मेघ को जैसे देखते हैं, और आनंद में भर करके उनको देखा, पंख फैला दिए इस प्रकार से, और नाचना आरंभ किया। समझा जाए मेघ हमारे जो बंधु हैं या मेघ से सुंदर बंशी की ध्वनि हुई, मैंने कृष्ण ने बजाई, मयूर लोग थिरकने लगे और उसके शब्दों पर नृत्य करने लगे, जैसे जैसे बंशी बजती है अब बंशी के ध्वनि पर मयूर लोग थिरकने लगे, एकदम देह की शुद्ध बुद्धि भूल गई। अब मयूर का नीचना देखना था, कृष्ण को और हो गया उत्साह। अब उन्होंने पंचम से सप्तम, सप्तम से इस तरह से सुरीली रागों में तरह तरह के सुरों को भरना आरंभ किया। मयूर एकदम मदहोश होकर के नृत्य करने लगा। कभी कभी के का एक साथ में हजारों बोल उठते हैं। इधर में उनको देखा अवर्तानी समस्त सत्व, कोयल ने देखा, दो एक कोयल ने कुहुक की, किंतु आज वो एकदम चुप हो गई। नित्य ऐसा कभी देखा नहीं, कोयल नित्य नहीं करती। उनका नित्य देख करके और कृष्ण का बंसी वादन और उनका मुखारविंद दोनों देखा, इधर मयूरों का नित्य करना देखा, एकदम वो भी एकदम तन मन विशुद्ध सब कुछ हो गई। देखा कबूतर है, कोयल है, सूक हैं, सारी हैं, ये सब एक साथ में चुपचाप वहीं पर बोले, बोलना भूल गए वो लोग, तो ये वृंदावन में ही संभव है समस्त। मयूर जब नृत्य करने लगा और बंसी कृष्ण बजाने लगे, तो मयूर ने अपनी पंख झाड़ दी और एक सुंदर पंख उसमें से निकला, नीचे